हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरे स्कंद अध्याय 8। प्रथम श्लोक से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासव महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णा युतमेश मे वर। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणाम दुःखशमनम् तं नमामि हरिं परम्। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारि हे नाथ नारा यण वासुदेव। जिहवेपि बस्वा ऋतुमेतदेव गोविन्द दामो धर्माधवेति। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। परम सौभाग्य से विभूषित श्रीमद् भागवतम कथा के तीसरे स्कंद के आज हम 8वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे। ये निश्चित रूप से गुरु और गौरंग की कृपा है कि हम इस अद्भुत ग्रंथ को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में 7वें अध्याय में विदुर जी ने जो जो प्रश्न पूछे थे, अब मैत्रेय मुनि उनका उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। प्रार्थना है आप सबसे कि हमें हमारे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा कि हम इन सब प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से समझ सकें और हृदय में सुषुप्त कृष्ण भक्ति को पुनः जागृत कर सकें। अध्याय 8। गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य। प्रथम श्लोक। कृपया मैत्रेय मुनि के मुख से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। मैत्रेय उवाच यत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत् प्रदानः बभूविथेह जितकीर्तिमाला पदे पदेनो तनयस्य भीष्णम् यत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत् प्रधाना बभूविथेह जित कीर्तिमाला पदे पदेनो तनयस्य भीक्षणम्। मैत्रेय वचन यानी मैत्र मुनि ने कहा सत्सेवनीय मतलब शुद्ध भक्तों की सेवा करने का पात्र बत पूर्वंश बत मंस ओह निश्चय ही पूर्ववंश मतलब राजा पूर्व का वंश यत क्योंकि लोकपाला राजा है भगवत प्रधाना भगवान के प्रति मुख्य रूप से अनुरक्त। भभू विथ अर्थात तुम भी उत्पन्न थे इह इससे अजित अजय भगवान कीर्तिमाला दिव्य कार्यों की श्रृंखला पदे पदे यानी प्रत्येक पद पर नूतनयसी नवीन से नवीनतर बनते हो अभीक्षणम सदैव। तो सबसे पहले तो मैत्रेय मुनि विदुर जी का आभार प्रकट करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि सत्सेवनीयो बत पुरुष मतलब आप तो शुद्ध भक्तों की श्रृंखला से आए हो। अनुवाद देखिए, हे मुनि मैत्रेय ने महामुनि मैत्रेय ने विदुर जी से कहा राजा पुरु का राजवंश शुद्ध भक्तों की सेवा करने के लिए योग्य है क्योंकि उस वंश के सारे उत्तराधिकारी भगवान के प्रति अनुरक्त हैं। तुम भी उसी कुल में उत्पन्न हुए हो, यह आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे प्रयास से भगवान की दिव्य लीलाएं प्रतिक्षण नूतन से नूतनंतर होती जा रही हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते महामुनि मैत्रेय ने विदुर को धन्यवाद दिया और उनके वंश की ख्याति का संदर्भ देते हुए उनकी प्रशंसा की। पूर्ववंश भगवत भक्तों से भरा पूरा था और उसके कारण महिमा मंडित था क्योंकि वो लोग निर्विशेष ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के प्रति अनुरक्त ना होकर सीधे भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम से जुड़े थे। अतः वे भगवान एवं उनके शुद्ध भक्तों की सेवा करने में योग्य थे क्योंकि विदुर उसी वंश के वंशज थे। अतः स्वाभाविक था कि वे भगवान के नित्य नूतन यश का दूर दूर तक विस्तार करने में लग गए। विदुर जैसे व्यक्ति की महिमा मंडित संगति का पाकर मैत्रेय आनंदित थे। उन्होंने विदुर की संगति को अतीव वांछनीय माना क्योंकि ऐसी संगति से मनुष्य की भक्तिमय सेवा की सुसुप्त प्रवृत्तियां त्वारायुक्त हो जाती हैं। श्री प्रभुपाद की जय। तो सबसे पहली बात जो यहाँ से समझनी है वो ये है कि एक भक्त हमेशा इसी बात की इच्छा करता है कि मुझे किसी भक्त का जो कि भगवान के साथ प्रेम करता है उसकी संगति प्राप्त हो। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जब मेरे भक्त आपस में मिलते हैं तो मेरे विषय में बातें करते हैं, उनको बहुत आनंद आता है। तो मैत्रेय मुनि विदुर जी से मिलकर और विदुर जी मैत्रेय मुनि से मिलकर कृतार्थ हो रहे हैं। और पहले तो विदुर जी ने उनके मिलने का के लिए अपना सौभाग्य प्रकट किया और अब मैत्रेय मुनि उनको उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके वंश की प्रशंसा कर रहे हैं कि जब ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं तभी भगवान की ख्याति को बढ़ाते हैं। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति को प्राप्त कर रहे हैं और उनके आदान प्रदान के विषय में श्रवण कर रहे हैं। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं सोहम नृणाम क्षुल्ल सुखाय दुखम महत् कथानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यां सोहं नृणां क्षुल्ल सुखाय दुःखं महत् कथानां विरमायतस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान ऋषभ। अब मैत्रेय मुनि कह रहे हैं सोहम निरामा, सोहम यानी वह मैं, निरामा मतलब मनुष्य, क्षुल्ल मतलब बहुत ही थोड़ा सा, अत्यल्प सुखाय सुख के लिए, दुखम दुख, महत यानी भारी। इस संसार में जीव थोड़ा सा सुख भोगने के लिए बहुत ज्यादा दुख को स्वीकार कर रहा है और उनके लिए महत गताना विरमायतस्य, महत माना बहुत बार और गताना मतलब उसको प्राप्त करने के, विरमाय यानी शमन हेतु, तस्य उसका, और उन सब के दुखों को समाप्त करने के लिए यानी विरमाय मतलब अब भगवान देख रहे हैं कि मेरे सारे बच्चे जो हैं वो बहुत ही कनिष्ठ सुख को प्राप्त करने के लिए कितना श्रम कर रहे हैं, कितना दुख को ग्रहण कर रहे हैं, तो फिर भगवान ने क्या कहा, किया प्रवर्तये भागवतम पुराणम, फिर भगवान ने साक्षात इस भागवत महापुराण को कहा, यदा साक्षात भगवान ऋषिभ्य, यद यानी जो, आहमना कहा साक्षात यानी प्रत्यक्ष, भगवान यानी भगवान ने ऋषिभ्य ऋषियों से। अनुवाद, मैत्रेय मुनि कहते हैं अब मैं भागवत पुराण से प्रारंभ करता हूँ जिसे भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से महान ऋषियों से उन लोगों के लाभार्थ कहा था जो अत्यल्प आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में फंसे हुए हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं मैत्रेय मुनि ने श्रीमद् भागवत के विषय में बोलने का प्रस्ताव रखा क्योंकि इसकी रचना विशेष रूप से मानव समाज की समस्त समस्याओं के समाधान के लिए की गई थी और यह शिष्य परंपरा से रूढ़िगत चली आ रही है। जो भाग्यशाली हैं केवल वही भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवतम सुनने का सुअवसर प्राप्त कर सकता है। भौतिक शक्ति के जादू के अधीन सारे जीव स्वल्प भौतिक सुख के निमित्त ही अनेक कठिनाइयों के बंधन में फंसे हुए हैं। वे सकाम कर्मों की उलझनों को ना जानते हुए उनमें लगे रहते हैं। वे इस मिथ्या भाव के कारण कि शरीर आत्मा है अनेक अनेक मिथ्या आसक्तियों से अपने को संबंध करते हैं। वे सोचते हैं कि वे भौतिकतावादी सात सामग्री से सदा जुड़े हुए रह सकेंगे। जीवन की यह मिथ्या भ्रांति इतनी प्रबल होती है कि मनुष्य भगवान की बहिरंगा शक्ति के अधीन जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता है। यदि वह भागवत ग्रंथ तथा भागवत जानने वाले भक्त, भागवत इन दोनों के संपर्क में आता है तो ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति भौतिक पाश के से छूट जाता है। अतएव संसार के दुखी लोगों के प्रति दया के कारण श्री मैत्रेय मुनि पहले श्रीमद् भागवत के विषय में बोलने का प्रस्ताव रख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि इस संसार में ज़्यादातर लोग तो भौतिक चीज़ों में ही फंसे होते हैं, बस वो सोचते हैं शरीर ही आत्मा है और शरीर के लिए कठिन श्रम करते रहते हैं, लेकिन उनमें से वो लोग जो कि भागवत महापुराण को श्रवण करने की इच्छा रखते हैं वो वास्तव में भाग्यशाली हैं। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़ा सा समय भी वो नहीं निकालते हैं कि वो भागवतम श्रवण करें। वो देखते हैं ना जब कि श्रीमद् भागवतम गुरु में एक घंटे का लेक्चर आता है और सब कितने लोग सुन रहे हैं, उनको लगता है पागल, इनको और कोई काम नहीं है क्या, बस वो श्रवण कर रहे होते हैं। तो उनको खबर नहीं है कि वो जो कार्य कर रहे हैं ना वो बल्कि फिजूल हैं और ये भागवतम श्रवण करना कितना अति उत्तम है, क्योंकि संसार के समस्त दुखों को समाप्त करने का, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है कि श्रीमद् भागवतम की रचना विशेष रूप से मानव समाज की समस्त समस्याओं के समाधान के लिए की गई है। ये हम सर संसार में दूसरी दूसरी विद्याओं से और दूसरे दूसरे तरीकों से अपनी समस्याओं के समाधान खोजते रहते हैं, लेकिन भगवान ने तो जाने के टाइम पर ही इस हर समस्या का समाधान दे दिया। तभी तो जब उद्धव जी ने पूछा कि आप तो चले जाओगे तो फिर संसार में धर्म की स्थापना कैसे होगी, जीवों का कल्याण कैसे होगा, तो भगवान ने कहा ये भागवतम श्रवण करने से, ये भागवतम दे के गए भगवान। तो हमें दिन प्रतिदिन इन भागवतम के शब्दों के प्रति अपनी रुचि बढ़ानी है, कैसे भी करके हमको कंटिन्यूस इसको श्रवण करने के लिए हृदय के अंदर उत्साह बढ़ाना है, ताकि हम अपने जीवन के समस्त समस्याओं को हल करके भगवत धाम को प्राप्त कर सकें। आगे मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ वो साक्षात भगवान ने संत कुमार को सुनाया था, सनत कुमार को सुनाया था। वे कहते हैं, आसीन मुर्या भगवंत माध्यम संकर्षणम देवमाकुंठ सत्वम विविद्सवस्तत्व मत परस्य कुमार मुख्या मुनयोन्व पृच्छन् आसीन मुर्यां भगवंत माध्यम संकर्षणं देवमाकुंठ सत्वं विविद्सवस्तत्वमत परस्य कुमार मुख्या मुनयोन्व पृच्छन्। आसीन मुर्यां, आसीन मतलब विराजमान, उर्व्यां मतलब ब्रह्मांड की तली पर, भगवंतम यानी भगवान को, आद्यम आदि पुरुष भगवान, संकर्षणम देवम अकुंठ सत्वम, संकर्षणम मतलब संकर्षण भगवान, देवम मतलब भगवान, और अकुंठ सत्व मतलब अबाध्य ज्ञान, विविध सव यानी जानने के लिए उत्सुक, तत्वम अत यानी इस प्रकार का सत्य, परस्य यानी भगवान के विषय में, कुमार मुखिया, कुमार मतलब बाल संत, मुखिया मना इत्यादि प्रमुख, मुनयः मुनयो पृच्छन् यानी मुनियों ने, अनुपृच्छन् मतलब इस प्रकार से पूछा था। अनुवाद, कुछ काल पूर्व तुम्हारी तरह कुमार संतों में प्रमुख सनत कुमार ने अन्य महर्षियों के साथ जिज्ञासावश ब्रह्मांड की तली में स्थित भगवान संकर्षण से भगवान वसुदेव के विषय में सत्यों के बारे में पूछा था। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यह इस कथन का स्पष्टीकरण है कि भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से श्रीमद् भागवतम के विषय में कहा। यहाँ पर बताया गया है कि कब और किससे भागवत कही गई। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्नों के ही समान प्रश्न सनत कुमार जैसे महामुनियों ने पूछे थे और भगवान वसुदेव के स्वांश भगवान संकर्षण ने उनके उत्तर दिए थे। तो शिला प्रभुपाल जी बोल रहे कि पिछले श्लोक में जैसे बताया गया है ना, यदा साक्षात भगवान ऋषभ्य, के भगवान ने कहा, तो यहाँ पर मैत्रेय में मुनि बता रहे हैं कि भगवान ने ये किसको कहा, सनत कुमार, ये जो ऋषियों के साथ चार कुमार आए थे उनको बताया। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, स्वामी वदिष्ण्यम बहुमानयंतम यद्वासुदेवा विदमामनन्ति प्रत्यत्रिताक्षां भुजकोशमीषत् उन्मीलयन्तं विबुधोदयाय स्वामीवदिश्र्यं बहुमानयन्तं यत्वासुदेवा विदमामनन्ति प्रत्यत्रिताक्षां भुजकोशमीषत् उन्मीलयन्तं विबुधोदयाय। अर्थात उस समय भगवान शंकरषण अपने परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे, जिन्हें विद्वज्जन भगवान वसुदेव के रूप में सम्मान देते हैं, किंतु महान पंडित मुनियों की उन्नति के लिए उन्होंने अपने कमलवत नेत्रों को कुछ कुछ खोला और बोलना शुरू किया। तो जैसे ही संत कुमार ऋषियों के साथ आए, भगवान से प्रश्न किया, तो वो भगवान उस समय भगवान शंकरषण अपने परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। तो शंकरषण जो कि भगवान का ही स्वरूप है, वो ध्यान कर रहे थे। किनका? द्विजजन, जिन्हें द्विजजन भगवान वसुदेव के रूप में सम्मान देते हैं, जिनको ब्राह्मण वसुदेव कहते हैं। तो शंकरषण भगवान वसुदेव का ध्यान कर रहे थे, किंतु महान पंडित मुनियों की उन्नति के लिए उन्होंने अपने कमलवत नेत्रों को कुछ कुछ खोला, फिर वो ध्यान कर रहे थे। शंकरषण भगवान प्रत्येक क्षण वसुदेव भगवान का ध्यान करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है उससे सबका कल्याण होगा, तो उन्होंने अपने नेत्र खोले और बोलना शुरू किया। और वो मुनिगण किस प्रकार गंगा नदी के माध्यम से भगवान तक पहुँचे थे, उसके विषय में बताते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं, स्वर्धुन्युदारदय स्वजटा कलापय उपस्प्रशंतर चरणान चरणोपधानम पद्मं यदर्शन्त्य हि राजकन्या सप्रेमनाना बलिभिर्वरार्था स्वर्धुन्युदारदय स्वजटा कलापर उपस्पृशन्तश्चरणोपधानम् पद्मं यदर्शन्त्य हि राजकन्या सप्रेमनाना बलिभिर्वरार्था स्वधुरिणी उद, यानी गंगा, ये स्वधुरिणी जो है वो गंगा जी को कहते हैं। आर्दय यानी भीगे हुए, स्वजटा यानी बालों का गुच्छा, जितने भी मुनि थे उनके बाल भीगे हुए थे, कलापय सिर पर जो उनके बाल थे जटाएं थी, और उपस्पृशंता अर्थात इस तरह छूने से चरण उपाधाना यानी उनके चरण कमलों की शरण। और ये कैसे कि उनके भगवान के चरण कमलों से जो गंगा जल निकला है उन्हीं को स्पर्श करके, पद्मम अर्थात कमल चरण, यत अर्शंति यानी जो पूजा करते हैं, अहिराज, अहिराज मतलब सर्पों का राजा शेषनाग, जिन भगवान के चरण कमलों की पूजा करते हैं, कन्या मतलब पुत्रियां, उनकी जो पुत्रियां, सप्रेम अतीव भक्ति समेत नाना बलि भी, नाना मतलब विविध, बलि भी मना साज सामग्री द्वारा, वर आर्था पत्तियों की इच्छा से। अनुवाद, चूंकि मुनिगण गंगा नदी के माध्यम से उच्चतर लोकों से निम्नतर भाग में आए थे, फलस्वरूप उनके सिर के बाल भीगे हुए थे, उन्होंने भगवान के उन चरण कमलों का स्पर्श किया जिनकी पूजा नागराज की कन्याओं द्वारा अच्छे पति की कामना से विविध सामग्री द्वारा की जाती है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, गंगा का जल सीधे विष्णु के चरण कमलों से प्रवाहित होता है और उसका मार्ग ब्रह्मांड के उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम लोक तक जाता है। मुनिगण प्रवाहित जल का लाभ उठाकर सत्यलोक से नीचे आए। तो ये जो गंगा नदी है वो वास्तव में उच्च लोक यानी जो ऊपर का लोक है ना, इस ब्रह्मांड के ऊपर जो कारण दक्षाए विष्णु है उनके जहाँ पर वो कारण समुद्र में है ना, वहाँ से ये जल निकला, क्योंकि जब बलि महाराज से वामन भगवान ने तीन पग धरती मांगी थी, तो वो भगवान का चरण जो है वो कारण जो परत है, कारण जल और भौतिक ब्रह्मांड के बीच में जो परत है वहां तक भगवान का चरण गया, और उस चरण से छू कर वो जल जब निकला तो ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल में समेट कर रख लिया, संभाल के रख दिया। तो ये जल जो है ऊपर से निकलता है ब्रह्मा जी के कमंडल तक, और ब्रह्मा जी के कमंडल तक से ना शिव जी की जटाओं तक, और शिव जी की जटाओं से गंगोत्री, और कंटिन्यूस ये पूरा मतलब ऊंचे लोकों से लेकर नीचे लोकों तक ये कंटिन्यूस चल रहा होता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी उसके विषय में बता रहे हैं कि उसका मार्ग ब्रह्मांड के उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम लोक तक जाता है। मुनिगण प्रवाहित जल का लाभ उठाकर सत्यलोक से नीचे आए, फिर उस जल के द्वारा वो नीचे आए सत्यलोक से, और परिवहन की यह विधि योग शक्ति से ही संभव हो सकती है। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि अभी मैं क्या करूँगा, गंगा जी में स्नान करूँगा और मैं भी सत्यलोक तक पहुँच जाऊँगा, ये योग शक्ति की सिद्धि से होता है। तो यदि कोई नदी हजारों मील तक प्रवाहित होती है तो पूर्ण योगी इसके जल में केवल डुबकी लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान में तुरंत पहुंच जाता है। गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है जो समूचे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है, और मुनिगण इस पवित्र नदी के माध्यम से ब्रह्मांड भर में यात्रा कर सकते हैं। यह कथन कि उनके बाल गीले थे यह सूचित करता है कि विष्णु के चरण कमल से सीधे निकले जल यानी गंगा से ही बाल गीले हुए थे। यहाँ लिखा हुआ है ना स्वजटा कलाप, तो ये जल गंगा जी से ही गीले हुए थे उनके बाल। तो जो भी व्यक्ति अपने सिर से गंगा जल का स्पर्श करता है वह प्रत्यक्ष रूप से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करता है और संपूर्ण पाप कृत्यों के फलों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करने या समस्त पापों के धुल जाने के बाद फिर से पाप कर्म करता है तो अपने को और अपने सॉरी क्षमा यदि कोई व्यक्ति गंगा जल में स्नान करने या समस्त पापों के धुल जाने के बाद फिर से पाप कर्म करने से अपने आप को बचाता है तो निश्चित रूप से उसका उद्धार हो जाता है। दोबारा अगर नहीं करेंगे तो फिर उद्धार हो जाएगा, किंतु यदि वह पुनः पाप कर्म में लगता है तो उसका गंगा स्नान हाथी के स्नान की तरह होगा। जो नदी में ठीक से नहाता है किंतु बाद में भूमि की धूल से अपने शरीर को दूषित करके सारा किया कराया बिगाड़ देता है। श्रील प्रभुपाद की जय। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं मुहुर् गृणन्तु वचसानुराग स्खलत् प्रदेनास्य कृतानि तञ्ज्या कीरीटसाहस्रमाणि प्रवीक प्रद्योतितोत्ता मफणा सहत्रम् मुहुर्गृणन्तो वचसानुराग स्खलत्पदेनास्य कृतानि तञ्ज्या कीरीटसाहस्रमाणि प्रवेक प्रद्योतितोत्तामफणा सहस्रम् मुहु गृणन्तो, मुहु मन बार बार, गृणन्ति मन गुणगान करते, वचसा मन शब्दों से, अनुराग अतीव स्नेह से, बहुत ही प्रेम के साथ बार बार वो गुणगान करते थे। स्खलत पदेना मना समलय के साथ, बहुत ही सुंदर उच्चारण, बहुत ही मधुर भाषा, स्मलय लय के साथ उच्चारण करते हुए अस्य उस भगवान के कृतानि यानी कार्यकलाप, भगवान के कार्यकलापों को बहुत ही सुंदर ढंग से गुणगान करते हुए संगीतमयी अंदाज में तत्ज्ञा यानी लीलाओं के जानने वाले किरीट, क्योंकि जो सनक आदि चार कुमार थे वो भगवान की लीलाओं से अवगत थे, इसलिए वो बहुत ही सुंदर रीति से गुणगान कर रहे थे। किरीट मना मुकुट, सहस्र मना हजारों, और मणि प्रवेक मणियों के चमचमाते तेज, प्रद्योतित उद्भासित उद्दाम उठे हुए फणा यानी फण सहस्त्रम हजारों, और जो शेषनाग था उसके हजारों फण अपनी मणियों के साथ बहुत ही चमक पैदा कर रहे थे, प्रकाश उत्पन्न कर रहे थे। अनुवाद, सनत कुमार आदि चारों कुमारों ने जो भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में सब कुछ जानते थे, स्नेह के साथ प्रेम से भरे चुने हुए शब्दों से लय सहित भगवान का गुणगान किया। उस समय भगवान संकर्षण अपने हजारों फनों से फनों को उठाए, अपने सिर की चमचमाती मणियों से तेज बिखेरने लगे। तो मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि जब चतुष कुमार अन्य महर्षियों के साथ जिज्ञासा करने के लिए पधारे थे, तो उस समय वो बहुत ही सुंदर रीति से गुणगान कर रहे थे, और जिसको सुनकर जो शंकरषण भगवान हैं अपनी उनके जो सिर के मणि थे वो बहुत चमचमा रही थी और तेज बिखेर रही थी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवान कभी कभी उत्तम श्लोक कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि जिसकी पूजा भक्तों द्वारा चुने शब्दों से की जाती है। जो भक्त भगवान की भक्ति में स्नेह एवं प्रेम से पूर्णतया निमग्न रहता है, उसके मुख से ऐसे चुने हुए शब्दों की झड़ी लग जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें एक छोटे से बालक ने भी, जो भगवान का महान भक्त था, भगवान की लीलाओं के गुणगान के लिए चुने हुए शब्दों में उत्तम स्तुति की। दूसरे शब्दों में मधुर स्नेह तथा प्रेम उत्पन्न हुए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की स्तुति उत्कृष्ट ढंग से नहीं कर सकता। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब जीव भगवान से प्रेम करने लगता है, जब पूरी श्रद्धा के साथ भगवान को समर्पित कर देता है, जब उसके हृदय में शुद्धता आ जाती है, तो उसके शब्द जो हैं वो भी इतने उत्तम हो जाते हैं। जैसे कि ध्रुव महाराज, देखा जाए तो उन्होंने कोई गुरुकुल में जाकर शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन वो भगवान से अतीव स्नेह करते थे। और जब हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं तो हमारी इच्छा रहती है ना कि हम भगवान की स्तुति करें। तो उसी तरह गुरु महाराज के समक्ष जब भगवान प्रकट हुए तो उनकी भी इच्छा हुई कि मैं कैसे भगवान की स्तुति करूं। तो फिर गुरु महाराज को भगवान ने अपना शंख जो है उनके गाल पर स्पर्श करवाया, और फिर उन्होंने अत्यंत ही मधुर और सुंदर ढंग से भगवान की स्तुति की। उसी तरह से भगवान की स्तुति करने के लिए, भगवान का गुणगान करने के लिए सांसारिक विद्वत्ता की ज़रूरत नहीं। हमको लगता है ये बहुत चालाक है, बहुत अच्छे तरीके से भगवान की भक्ति कर भगवान का गुणगान करता है, प्रचार करता है। नहीं, भगवान को तो वही अच्छा लगता है जो प्रेममयी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ भगवान के साथ जुड़ता है। और जब हम बहुत ही प्योरिटी के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान के से प्रेम करते हैं, तो उस समय जो शब्द निकलते हैं वो दूसरे जीवों के हृदय को बहुत ही तीव्रता के साथ पवित्र करते हैं। तो ये सबसे बड़ी है ना क्वालिटी है। इसीलिए यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति में स्नेह एवं प्रेम से पूर्णतया निमग्न रहता है, उसके मुख से ही चुने शब्दों की जड़ी लगती है। इसलिए हमें सदैव भगवान के साथ प्रेम के साथ स्नेह के साथ युक्त रहना चाहिए, और अधिक से अधिक अपने गुरु महाराज के वचनों का पालन करना चाहिए, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, ताकि हम भी भगवान की अच्छे से स्तुति कर सकें, गुणगान कर सकें, प्रचार कर सकें। आगे मैत्रेय मुनि बताते हैं, प्रोक्तम कलयतत् भगवत्तमेन निवृत्ति धर्मा विरतायतेन सनत् कुमाराय सचाह पृष्ट सांख्यान यनायांग धृत व्रताय प्रोक्तम क कलैतत् भगवत्तमीना निवृत्तिधर्माभिरताय तेना सनत्कुमाराय सचाह पृष्ठ सांख्याय नायांगधृत व्रताय प्रोक्तम यानी कहा गया था किल निश्चय ही एतत यह भगवत्तमेन यानी भगवान संकर्षण द्वारा निवृत्त धर्म अभितराय निवृत्त माना वैराग्य धर्म अभिरताय मतलब इस धार्मिक व्रत को धारण करने वाले के लिए तेन उसके द्वारा सनत कुमाराय सनत कुमार को सा उसने भी आह कहा पृष्ठ यानी पूछे जाने पर सांख्या या नाम यानी सांख्या नामक महर्षि को अंग हे विदुर धृतव्रताय यानी व्रत धारण करने वाले को अनुवाद इस तरह भगवान संकर्षण ने उन महर्षि सनत कुमार को से श्रीमद् भागवतम का भावार्थ कहा जिन्होंने पहले से वैराग्य का व्रत ले रखा था सनत कुमार ने भी अपनी पारी में सांख्यायन मुनि द्वारा पूछे जाने पर श्रीमद् भागवतम को उसी रूप में बताया जिस रूप में उन्होंने संकर्षण से सुना तो ये एक परंपरा प्रणाली बता रहे हैं मैत्रेय मुनि बता रहे कि देखो मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो कितना महत्वपूर्ण है भगवान ने शंकरषण को सुना है शंकरषण ने सनत कुमार को सुनाया और सनत कुमार ने उसके बाद सांख्यायन मुनि को सुनाया तो ये गुरु परंपरा से मिलने वाला ज्ञान है श्रील प्रभुपाद की जय श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं परंपरा प्रणाली की यही विधि है यद्यपि सुप्रसिद्ध सनत कुमार जीवन की सिद्धि अवस्था में थे फिर भी उन्होंने भगवान संकर्षण से श्रीमद् भागवतम का संदेश सुना इसी तरह सांख्यायन ऋषि द्वारा पूछे जाने पर सनत कुमार ने भगवान संकर्षण से जो संदेश सुना था उसे कह सुनाया दूसरे शब्दों में जब तक कोई उचित अधिकारी से नहीं सुन लेता तब तक वह उपदेशक नहीं बन सकता इसीलिए भक्ति योग में 9 बातों में से 2 बातें श्रवण तथा कीर्तन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ठीक से सुने बिना कोई व्यक्ति वैदिक ज्ञान के संदेश का प्रचार नहीं कर सकता आजकल हम देखते हैं लोग श्रवण किसी से भी नहीं करते हैं ना उनको गीता और भागवतम के श्लोकों का पता होता है बस उनको बोलना इतना अच्छा आ जाता है पता नहीं वो ऐसे से जादूगरी वर्ड जगलरी ऐसे होते हैं मतलब इतने शार्प होते हैं बस अपनी मर्जी से मनगढ़ंत बातें बताते हैं और हमारी पब्लिक भी इतनी मूर्ख है जो श्रोता गण आते ना वो भी बस उनमें इतना क्या तो प्रवचन करता है क्या तो मजा आता है इसके प्रवचन में ये वो लेकिन मजे के लिए थोड़ी ना प्रवचन होता है प्रवचन तो इसलिए होता है कि हमारा हृदय भगवान को भगवान के प्रति आकर्षित हो हमारे हृदय की मलिनता नष्ट हो हमारे अपराध समाप्त हो जाएं हम क्या करेंगे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को से दूर बचने के लिए खाली श्रवण करने से कुछ नहीं होगा श्रवण भी ऐसे व्यक्ति से करना चाहिए जो परंपरा से आता हो जो स्वयं फॉलो करता हो और जब वो फॉलो करेगा तब जब हम सुनेंगे तभी हमारे हृदय की अपवित्रता समाप्त होगी तो भक्तों हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि हम साक्षात श्रील प्रभुपाद जी के इन शास्त्रों से पढ़ रहे हैं ये श्रील प्रभुपाद जी के शास्त्र जो हैं वो हमारे लिए एक मैचलेस गिफ्ट है क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक ये शास्त्र हैं तब तक मैं हूँ और आई विल नेवर डाई आई विल लिव फॉर सेंचुरीज अगर आप मेरे शास्त्रों को पढ़ते रहोगे आप मेरे शास्त्रों को वितरण करते रहोगे डिस्ट्रीब्यूट करते रहोगे तो मैं सदैव साथ रहूँगा कभी भी दूर नहीं होऊंगा। तो हम सबका ये कर्तव्य है ना कि इन शास्त्रों को अधिक से अधिक डिस्ट्रीब्यूट करें, अधिक से अधिक प्रिंट कराएं। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में कितने थोड़े से शास्त्र हैं, तो हम सबको इसके लिए चिंतित होना चाहिए कि आज हमारा तो इन शास्त्रों के लिए कल्याण हो रहा है, लेकिन यदि हम इनको और प्रिंट नहीं करवाएंगे और इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो न्यू जनरेशन जो आएगी, हम तो आज हैं कल मर जाएंगे, तो न्यू जनरेशन को ये रियल ज्ञान कैसे पता चलेगा, श्रील प्रभुपाद जी का संग कैसे होगा। तो हम सबका कर्तव्य है कि बिल्कुल सीरियसनेस के साथ श्रील प्रभुपाद जी के शास्त्रों को वितरण करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट करवाएं, ताकि सारे लोग इनको पढ़ कर अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।